अध्याय 6 लड़कियों के लिए। यह अध्याय डॉक्टर मिसेस एनी पूनन, जो स्वयं MBBS है, उनके द्वारा लिखी गई है। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। इस प्रकार से बाइबल एक भली स्त्री का वर्णन करती है। नीति वचन 31:10। अन्य जातीय संस्कृति ने हमेशा पुरुष की अपेक्षा स्त्री को सृष्टि में निम्न स्तरीय माना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से अपने उपदेश और उदाहरण के द्वारा ये सिखाया है कि परमेश्वर ने स्त्री का स्थान पुरुष के बगल में ठहराया है, उसके पैरों तले नहीं। परमेश्वर द्वारा स्त्री की सृष्टि विशेष कार्य पूर्ति के लिए की गई है, जिसे पुरुष कभी नहीं कर सकता, और इसलिए केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रीति से भी। परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष से भिन्न बनाया है। मातृत्व की अपेक्षाओं के कारण उसे इस प्रकार से बनाया गया कि वह पुरुष से अधिक संवेदनशील, अधिक आधीन और भावनात्मक है, इसलिए उसमें प्रेम करने की अधिक क्षमता है और साथ ही साथ प्रेम पाने की अधिक इच्छा भी होती है। इनके बिना वह स्वाभाविक रूप से अतृप्त महसूस करती है। उसके विशिष्ट कार्यों के कारण उसे पुरुषों से अधिक बहुमुखी प्रतिभाशाली माना जाता है, इसलिए उसे तेज कुशाग्र बुद्धि का विशेष वरदान भी प्राप्त है। परंतु पुरुष इस बात को सहजता से स्वीकार नहीं करेंगे। स्टडीज इन द प्रोफेसी ऑफ जर्मिया में जी कैंपबेल मॉर्गन ने स्त्री की जिम्मेदारियों के विषय में ये कहा है, स्त्रियों को ये जानना चाहिए कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता को जगत में प्रकट करने की बात स्त्रियों में पूर्ण होती है, क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, तो ये भी लिखा है कि उसने मनुष्य की सृष्टि अपने ही स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में की। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। मैं इस बात को व्यक्त करने की कठिनाई को जानती हूँ कि यदि हमें परमेश्वर को और साथ ही साथ मानव जाति को समझना है, तो ये पवित्र शास्त्र का एक गहरा सत्य है कि स्त्रीत्व में परमेश्वर का एक ऐसा भाग प्रकट होता है जो पुरुष में नहीं पाया जाता। स्त्री को एक विशेष और पवित्र जिम्मेदारी दी गई है, जिसे कोई पुरुष कभी नहीं कर सकता। वह क्या है और मैं इसे किस प्रकार व्यक्त करूं कि यह सच है कि परमेश्वर केवल पिता नहीं है, बल्कि यह सच है कि परमेश्वर माँ है। यदि बाइबल में परमेश्वर पिता है, ये महान सिद्धांत सिखाया जाता है, तो स्पष्ट रूप से परमेश्वर के मातृत्व के विषय में भी सिखाया जाता है। यशया 66:13 और मत्ती 23:37। कोमलता की रहस्यमय और भेद भरी गहराइयां, जो अनंत सामर्थ का सार है, स्त्रीत्व में बेपर्दा होती है। मातृत्व का पवित्र और पृथक भेद आश्चर्य कर्म और शक्ति द्वारा हम जैसे इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं केवल मातृत्व की वास्तविकता के विषय में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी स्त्रियां भी है जो वास्तविक अर्थ में कभी माताएं नहीं बनी, परंतु फिर भी कोमलता, संरक्षण और सामर्थ्य के वे सभी कार्य कर रही है जो एक माँ कर सकती है। वह रक्षा करती, बचाती, चंगा करती और सहायता करती है। ये ऐसा सामर्थ्य गुण है जो अनंत कोमलता, स्नेहशीलता और सौंदर्य के महीन धागों से बुना गया है, जो स्त्रीत्व की सर्वोच्च महिमा है। परमेश्वर हमें ऐसे दिन से बचाए जब कोई कठोर और दर्द भरी बात स्त्रीत्व के भीतरी कोमलता को नष्ट कर दे। इन्हीं सब गुणों द्वारा उसे परमेश्वर को प्रकट करना है। परमेश्वर के स्वभाव का वह पहलू जिसे मानव शब्द स्पष्ट करता है और जिसे हम केवल मातृत्व द्वारा संबोधित कर सकते हैं, और ये स्वीकार करने में माताएं प्रथम होंगी कि परमेश्वर के विषय में उत्कृष्ट बातों को प्रकट करना उनके लिए एक आवरण है। परमेश्वर को स्त्रीत्व में अपना भाव प्रदर्शित करना है। स्त्री की बुलाहट ही ऐसी है। यदि वह स्वयं को परमेश्वर को समर्पित करे तो परमेश्वर द्वारा दी गई ये विशिष्ट खूबियां परमेश्वर की महिमा और दूसरों की भलाई के लिए अत्यधिक रूप से उपयोग की जा सकती है। किंतु यदि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ईश्वर की खोज न करे तो इन खूबियों का दुरुपयोग हो सकता है और यह व्यर्थ भी जा सकता है। परमेश्वर यह समझने में हमारी सहायता करे कि कोमलता और सौम्यता, जो परमेश्वर द्वारा स्त्रियों के लिए विशेष उपहार है, वह आशा करता है कि हम जीवन की सामान्य बातों में सौंदर्य लाए और इस प्रकार अपने चारों ओर लोगों के लिए आशीष का कारण बने। स्त्री में यौन प्रवृत्तियां भी होती है। पुरुष की तुलना में उसकी प्रवृत्तियां निष्क्रिय होती है और इसलिए उन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। स्त्री में ये प्रवृत्तियां होना बहुत ही स्वाभाविक है और यदि न हो तो वह असामान्य मानी जाती है। स्त्री ध्यान और प्रेम पाने की इच्छुक होती है। खुद का एक घर और परिवार होने की इच्छा पुरुष से अधिक स्त्री में होती है। इस प्रकार की इच्छाएं वास्तव में मातृत्व की तैयारी के लिए होती है। ये अच्छी बात है क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसी प्रकार बनाया है। इस प्रकार की इच्छाओं के कारण स्वाभाविक है कि एक लड़की विवाह के अभिप्राय से पुरुष की ओर आकर्षित महसूस करे। हो सकता है पुरुष केवल शारीरिक निकटता के लिए लड़कियों की ओर आकर्षित हो, किंतु लड़कियां सामान्य रूप से पुरुषों की ओर केवल विवाह के अभिप्राय से ही आकर्षित होती है। इसके अलावा ऐसे बहुत कम उदाहरण है जब लड़कियां केवल इश्कबाजी के उद्देश्य से लड़कों से मित्रता करती है, परंतु ये असामान्य बात है। इसके दूसरी ओर ऐसे कुछ उदाहरण भी है जहां लड़कियां विरोधी यौन के प्रति थोड़ा भी आकर्षण महसूस नहीं करती है, परंतु इसके विपरीत अत्यंत असामान्य और अस्वस्थ रीति से अपने समान लिंग के प्रति आकर्षित होती है। ये भी अस्वाभाविक और अस्वस्थ है और ये अक्सर समलैंगिकता का लक्षण होता है। वस्त्र में शालीनता। बाइबल जवान स्त्रियों को चेतावनी देती है, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी, जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से सवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। 1 पत्रस 3:3-5। स्त्री के भीतर विरुद्ध यौन को आकर्षित करने की शक्ति होती है। ये परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति है, किंतु इसका अत्यधिक रूप से अक्सर दुरुपयोग होता है। यदि इस शक्ति को पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अधीन न रखा जाए तो ये लड़की के लिए खतरे की बात होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, लड़कियां अपने भीतर की इस योग्यता को पहचानने लगती है और इसे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने की परीक्षा में पड़ जाती है। सौंदर्य वृद्धि के तमाम साधनों का उपयोग करना, देह को अधिक दिखाना, आधुनिक पहनावों के द्वारा और बाल संवारने में अधिक समय खर्च करना, ये इसका परिणाम होता है। बाइबल कहती है कि वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। 1 तीमुथियुस 2:9-10। यह पहले बताए पद के अनुसार परमेश्वर द्वारा हमारे लिए वास्तविक सुंदरता को परिभाषित किया गया है। हमारा देह परमेश्वर द्वारा दिया गया पवित्र खजाना है और हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना है। हमें अपनी देह में परमेश्वर को महिमा देने की आज्ञा दी गई है। ये केवल शारीरिक आदतों को सूचित नहीं करती है, परंतु उन वस्त्रों की ओर भी इशारा करती है जिन्हें हम देह पर पहनते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने सियोन की पुत्रियों को अनेक माध्यमों के द्वारा विरोधी यौन को आकर्षित करने की इस शक्ति के दुरुपयोग के लिए दोषी ठहराया है। यशायाह 3:16-24। अक्सर हमारे वस्त्र इस बात का विज्ञापन होता है कि हम भीतर क्या है। ये कुछ हद तक हमारे व्यक्तित्व को प्रकट करता है। कुछ लोग पहली नजर में ही हमारे वस्त्रों को देखकर हमारे विषय में धारणा बना लेते हैं। यदि हम अपने वस्त्रों में सांसारिक फैशन का अनुकरण करें, तो हम अपने मसीही गवाही को खो सकते हैं, क्योंकि लोग अवश्य यह ध्यान देंगे कि हमने क्या पहना है। वह हम में क्या देख रहे हो, ये शायद वह हमसे न कहे। परंतु जब हम उन्हें ये बताते हैं कि मसीह ने हमें इस बुरे संसार से बचाया है, तो वह हम पर मन ही मन हंसेंगे। इसलिए हमें अपने वस्त्रों के विषय में भी सावधान रहना चाहिए। मेरा ये अर्थ नहीं है कि हम फटे पुराने वस्त्र पहने, नहीं, हमें स्वच्छ और आकर्षक भी दिखने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम गंदे या अप्रिय रहे। A.B. सिम्पसन ने कहा है कि एक विश्वासी का वस्त्र सादगी पूर्ण और शालीन होना चाहिए, ताकि दूसरे उसमें कुछ भी विशेष न देख सके और वस्त्र पहनने वाली स्वयं ये भूल जाए कि उसने क्या पहना है। अनुकरण करने के लिए ये एक अच्छा नियम है। किसी भी परिस्थिति में हमारे वस्त्र पहनने का तरीका इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि वह पुरुष को वासना के लिए उकसाए। यदि परमेश्वर कभी वासना के लिए पुरुष का न्याय करेगा तो मेरे विचार में ये कहना भी सही होगा कि परमेश्वर उन लड़कियों का भी न्याय करेगा जिन्होंने वासना उकसाने वाले वस्त्र धारण किए थे। एक और बात जो मुझे यहाँ अवश्य कहनी चाहिए वह माथे पर बिंदी लगाने के संबंध में है। इन दिनों मसीही लड़कियों की बढ़ती संख्या देखना दुखद है जो इस हिंदू प्रथा को अपनाती जा रही है। ये बिंदी हिंदुओं का ईश्वर शिव का नेत्र समझा जाता है और इसको धारण करने वाले को उसका उपासक पूजा करने वाला माना जाता है। इसलिए न केवल ये पापमय है परंतु ऐसा चिन्ह धारण करना एक मसीही लड़की के लिए खतरनाक भी है क्योंकि ये उसे उस देवी देवताओं और दुष्टात्माओं की पूजा में सम्मिलित करता है भले ही वह इसे न जाने। ये केवल फैशन की बात नहीं है जैसा कि हम में से कुछ लोग समझते हैं। परमेश्वर हमें उन सभी सांसारिक प्रचलन और फैशन के विरुद्ध खड़े होने का साहस दे जो हमारी मसीही गवाही को बाधित करती है। परमेश्वर ने इसहाक की पत्नी होने के उच्चतम सौभाग्य के लिए रिबका का चुनाव क्यों किया जो इसहाक अब्राहम से की गई प्रतिज्ञाओं का उत्तराधिकारी था, या यीशु की माता होने के लिए मरियम का चुनाव क्यों किया गया? निश्चय ही ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके हृदय में वह भीतरी सौंदर्य था जो परमेश्वर को प्रसन्न करता था। वास्तविक सौंदर्य भीतर होता है, बाहर नहीं, और इसे सौंदर्य प्रसाधन की दुकान से नहीं खरीदा जा सकता है। नीति वचन 31:30। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बाइबल कहती है कि एक भक्तिहीन स्त्री का सौंदर्य उस सुअर के समान है जिसके नाक में सोने की नथ पहनाई गई हो। नीति वचन 11:22। कितनी कठोर भाषा, परंतु यह हमें सही मूल्यों के विषय में जानकारी देता है। मैं जानती हूँ कि बहुत सी लड़कियां इस संसार के फैशन का अनुकरण करने के द्वारा परमेश्वर के उच्चतम स्तर को खो रही है। पुरुषों के साथ संबंध, आप चाहे या न चाहे, परंतु आपको जल्द या कुछ देरी से ये ज्ञात होगा कि लड़के आप में रुचि ले रहे हैं। हो सकता है वे आपके महाविद्यालय के या कलीसिया के या आपके पड़ोस के हो। आप इसे अनदेखा नहीं कर सकती है, इसलिए आपको ये जानना आवश्यक है कि आपको उनके साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि अध्याय 2 में यौनों के बीच संबंध के विषय में कहा जा चुका है, इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं दोहराऊंगी, परंतु मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ जिन पर लड़कियों को विशेष कर ध्यान देना चाहिए। इन दिनों लड़कियां पुराने समय की बहनों की अपेक्षा बड़ी उम्र में विवाह करती हैं, क्योंकि लड़कियां इन दिनों अधिकाधिक संख्या में उच्च शिक्षा के लिए जाने लगी है। उपाधि अथवा प्रशिक्षण प्राप्ति के इस दौर में वह बहुत सी परीक्षाओं से गुजरती है। विवाह की इच्छा नहीं होते हुए भी वह अपनी आकर्षण शक्ति का इस्तेमाल करके पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने की परीक्षा में पड़ जाती है, और यदि इस परीक्षा के सामने वह झुक जाए तो ये अंत में उसके लिए विपत्ति ला सकती है। लड़कियों को ये अवश्य जानना चाहिए कि पुरुषों की तुलना में वह अधिक समय तक भावनाओं से प्रभावित रहती है। एक युवक के लिए किसी लड़की से प्रेम में पड़ना आसान होता है और उतनी ही आसानी से वह उसे भूल भी सकता है। तब वह भावनात्मक जीवन में अधिक हानि हुए बिना दूसरी लड़की के साथ भी यही बात दोहरा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश युवकों का लक्ष्य केवल शारीरिक संबंध से होता है, जिस सीमा तक वह लड़की उसे स्वीकृति दे। हो सकता है कि इसमें प्रेम का कोई भाव नहीं हो, परंतु ऐसे संबंध में लड़की भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है। लड़की के लिए एक बार किसी लड़के से प्रेम करने के पश्चात उससे भावनात्मक रीति से अलग होना कठिन होता है, और कुछ स्त्रियों ने विवाह के बाद भी इसका अनुभव किया है। एक सच्चाई जिसने उनके विवाहित जीवन को दुखद बना दिया है। इसलिए वास्तव में सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि स्पर्श से आने वाली परीक्षा बड़ी प्रभावशाली होती है। इसलिए आपको किसी भी लड़के को अपना हाथ थामने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, चुंबन लेने की तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार यदि इनकी अनुमति दी जाए तो फिर आपके लिए अपने मन से व्यर्थ कल्पनाओं को निकालना बहुत ही कठिन होगा, और तब आसानी से एक कदम दूसरे कदम को बढ़ावा देगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि आपके और लड़के के बीच मित्रता टूट जाती है, यानी ब्रेकअप होता है, तब आपको लड़के की अपेक्षा अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके लिए आपको छोड़ देना और किसी और से विवाह करना आसान होगा, परंतु आपके लिए ये आसान नहीं होगा। आप पर कलंक लग जाएगा और परिणाम ये होगा कि भविष्य में दूसरा साथी पाना आपके लिए अत्यंत कठिन होगा। ये विशेषकर भारत में सच है। मैं यहाँ केवल उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो विवाह पूर्व मिलने जुलने यानी डेटिंग और शारीरिक स्पर्श में फंस चुके हैं, परंतु उनके विषय में भी जिन्होंने किसी लड़के के साथ केवल एक शुद्ध प्रेम संबंध रखा था, केवल पत्र व्यवहार के द्वारा, वे भी उतने ही दुखी होंगे जब उनके प्रेम संबंध की बात उनके पत्र व्यवहार की बात या ईमेल या मैसेजेस दूसरों को प्रकट होगी। यह लड़कियों को अपनी नाजुक स्थिति को नहीं भूलना चाहिए। प्रारंभ में सावधान नहीं होने के कारण दुख उठाने वाली और अपना सम्मान खोने वाली लड़कियां कम नहीं है। ऐसी बातों ने केवल उनकी खुद की गवाही को व्यर्थ नहीं किया है, परंतु इससे परमेश्वर के नाम की भी बड़ी निंदा हुई है। बाइबल बिना वजह नहीं कहता है कि स्त्री निर्बल पात्र है और पुरुष की अपेक्षा शीघ्र ही बहकावे में आती है। 1 पत्रस 3:7 और 1 तिमोथियस 2:14। जब तक कि आप निकट भविष्य में विवाह के विषय में नहीं सोच रहे हो, तब तक आपको क्यों किसी लड़के से गहरी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, इसके विषय में मुझे एक और कारण देना है। आपके जीवन के अविवाहित वर्ष ही वह समय है जब आप परमेश्वर की स्वतंत्रता पूर्वक सेवा कर सकती है। आपके विवाह करने के बाद आप अपने समय की स्वामिनी नहीं रह पाओगी। यदि अविवाहित वर्षों को पुरुष मित्रों का सपना देखते हुए बर्बाद कर दिया जाए, तो आप जीवन का एक महत्वपूर्ण काल खो देती है, जिसका सदुपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए किया जा सकता था। इसलिए शैतान को अवसर न दीजिए कि वह आपको मार्ग से भटका दे। मैं इस विषय पर दो सलाह और देना चाहूंगी। प्रथम, कभी भी आत्मिक विषयों पर सलाह लेने के लिए किसी अविवाहित पुरुष के पास मत जाइए। इसके बजाय दूसरी महिला या अधिक बुजुर्ग पुरुष के पास जाइए। द्वितीय, कभी भी किसी विवाहित पुरुष से मित्रता मत कीजिए, सामान्य मित्रता भी नहीं, यदि उसकी पत्नी से भी उतनी मित्रता न हो। विवाह, सभी माताएं इस बात से सहमत होंगी कि विवाह और मातृत्व में उन्होंने एक प्रकार की परिपूर्णता और संपूर्णता का अनुभव किया है, जिसे उन्होंने अविवाहित जीवन के दौरान नहीं किया था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वे जो परमेश्वर के द्वारा अविवाहित रहने के लिए बुलाए गए हैं, वे परिपूर्णता से चूक गई है। एक मसीही लड़की को, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में संतुष्ट होना चाहिए और परमेश्वर के प्रति ऐसी आज्ञाकारिता में कुवारी लड़कियां भी पूर्णता पा सकती है। फिर भी स्त्री की अविवाहित जीवन के लिए बुलाहट कुछ विशिष्ट मामलों में ही होती है। प्राथमिक रूप से परमेश्वर द्वारा स्त्री एक पत्नी और माँ बनने के लिए ही बनाई गई है। किसी भी लड़की को ये महसूस करने की आवश्यकता नहीं है कि विवाह उसकी मसीही सेवकाई को सीमित कर देगी, ये उसके कार्यों को सीमित कर सकती है, परंतु उसकी आत्मिक सेवकाई को सीमित नहीं कर सकती है। एक लड़की जो सक्रिय रूप से मसीही सेवकाई कर रही है, वह देखती है कि स्वतंत्र रूप से जो कार्य वह कर रही थी, विवाह के बाद उस पर पाबंदी लगाई जाती है और उसके चाल चलन को भी नियंत्रित किया जाता है। वैवाहिक जीवन में पुरुष नहीं, परंतु केवल स्त्री ये अनुभव करती है। इसलिए उसे अवश्य ही ये जानना चाहिए कि परमेश्वर उससे विवाह के बाद कुछ अन्य प्रकार की सेवकाई चाहता है। यदि उसे निराशा और चिंता से मुक्त रहना है, तो ये आवश्यक है कि वह इस सच्चाई को स्वीकार करे। विवाह के बाद उसकी प्रमुख बुलाहट गृह निर्माती, घर बनाने वाली के रूप में होती है। उसे अपने घर को अनेक पीड़ित युवाओं के लिए और बड़ी उम्र के लोगों के लिए भी चरण स्थान बनाना चाहिए और अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाना चाहिए। ये भी उस सेवकाई के समान महत्वपूर्ण है जो वह अविवाहित दिनों में किया करती थी। जैसा कि किसी ने कहा है कि वह स्त्री जो अपने विवाहित जीवन से प्रसन्न है और जिसने अपने विवाह की हर परिस्थितियों को, समय और ऊर्जा की उसकी अपेक्षाओं को और अपनी स्वतंत्रता की सीमाओं को पूरी रीति से स्वीकार कर लिया है, वह दूसरों को बहुत कुछ दे सकती है। अपने घरेलू जीवन के अनुभव के द्वारा और दूसरों के प्रति परवाह करने के उसके संवेदनशील गुण, जो विवाहित प्रेम का परिणाम है, इसके कारण वह ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकती है जिसमें मित्रता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। सुसाना वेस्ली कोई प्रचारिका नहीं थी, फिर भी वह एक धार्मिक माँ थी और उसने अपने सारे बच्चों का पालन परमेश्वर के भय में किया था। उनके दो पुत्र जॉन और चार्ल्स बड़े होकर इंग्लैंड में आत्मिक जागृति लाने के लिए परमेश्वर के सामर्थी साधन बने। इस प्रकार से उस धार्मिक माता ने अपने देश के लिए इतना अधिक कार्य किया जितना वे अविवाहित रहकर कभी नहीं कर पाती। विवाह की तैयारी के रूप में प्रत्येक लड़की को नीति वचन 31वां अध्याय 10 से 31 पर अक्सर मनन करना चाहिए। वह हमें एक आदर्श पत्नी का विवरण मिलता है। परमेश्वर का भय मानना ही उसके संपूर्ण जीवन का रहस्य है। पद 30। परंतु इस प्रकार के पत्नीत्व की नींव विवाह से बहुत पहले ही पड़ चुकी होती है, इसलिए ये परिच्छेद प्रत्येक मसीही लड़की के लिए एक चुनौती होनी चाहिए। यहाँ कही गई प्रत्येक बात इतनी स्पष्ट है कि इसको समझाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ वर्णित अच्छे गुणों में से एक मितव्ययिता है। आदर्श पत्नी वह है जो धन खर्च करने में सावधानी बरतती है। ये एक ऐसी आदत है जिसमें प्रत्येक लड़की को बढ़ना चाहिए। आजकल कॉलेज जाने वाली बहुत सी लड़कियां खर्चीली होती है। यदि आप अभी से मितव्ययिता का पालन करें, यानी कम खर्च करें, तो बाद में विवाह के बाद आपको इससे बड़ा लाभ होगा। आपका वर्तमान अनुभव आगे चलकर आपके काम आएगा। त्याग दूसरी बात है जिसे हर एक लड़की को विवाह की तैयारी के रूप में सीखना चाहिए। बिना त्याग के विवाह आनंदमय नहीं हो सकता। ये बात विशेषकर लड़की के संबंध में सही है। विवाह के बाद पुरुष की अपेक्षा उसे अधिक त्याग करने पड़ेंगे। उसे कुवारेपन में प्राप्त बहुत से अधिकारों को छोड़ना होगा। यदि आप अभी विवाह से पहले त्याग के अर्थ को नहीं समझते हैं, तो आगे चलकर आपको बहुत कठिनाई होगी। इसलिए परमेश्वर से कहिए कि वह आपको ये सब सिखाए। विवाह की तैयारियों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह निस्संदेह प्रार्थना है। मैं सलाह देती हूँ कि विवाह की संभावना के 2-3 वर्ष पूर्व से ही हर एक मसीही लड़की को गंभीरता पूर्वक नियमित रूप से अपने जीवन साथी के विषय में प्रार्थना करनी चाहिए। उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति से विवाह करने के लिए वह उसकी अगुवाई करे और बाकी सभी प्रस्ताव व्यर्थ हो जाए। भारत में इसकी अधिक आवश्यकता है, क्योंकि अपने बच्चों के विवाह में माता पिता का बड़ा हाथ होता है, खासकर लड़कियों के विवाह के विषय में। इसलिए एक लड़की को प्रार्थना करनी चाहिए कि उसके माता पिता चाहे उद्धार प्राप्त किए हो या न हो, फिर भी परमेश्वर उनकी अगुवाई करे। वे जो निरंतर विश्वास से मांगते हैं, वे अपनी प्रार्थनाओं का अद्भुत उत्तर प्राप्त करेंगे। विवाह की तैयारी के रूप में एक और व्यावहारिक सलाह। अभी जब भी आपको समय मिले, कुछ भोजन बनाना सीखिए। ये विवाह के बाद आपको अनेक कठिनाइयों और शर्मिंदगी से बचाएगा। किन गुणों को देखना चाहिए? भावी पति में एक लड़की को किन गुणों को देखना चाहिए? अध्याय 5 में इसके प्रमुख विषयों का वर्णन किया जा चुका है। मैं केवल कुछ बातें जोड़ना और दोहराना चाहूंगी जिन्हें लड़कियों को ध्यान में रखना चाहिए। लड़की को एक ऐसे साथी की आवश्यकता है जो उसकी रक्षा करे और उसमें सुरक्षा का भाव प्रदान करे, जो उसकी सहायता करे, उसे सांत्वना दे और कुछ हद तक उसे समझ भी सके। उसे सामर्थी और परिपक्व होना चाहिए कि वह उस पर निर्भर हो सके और जो उसमें हीन भावना उत्पन्न नहीं करे। पुरुष पर निर्भर रहने के लिए परमेश्वर ने स्त्री की सृष्टि की। इसलिए जिस व्यक्ति पर आप विचार कर रहे हैं, वो ऐसा हो जो आप में आत्मविश्वास उत्पन्न करे और जिसके विषय में आपको भरोसा हो कि उस पर आश्रित रहा जा सकता है। बाइबल कहती है कि पत्नी अपने पति का भय माने, आज्ञा पालन करे। इफिसियो 5:33। आदर से प्रेम उत्पन्न होता है और यदि पत्नी अपने पति को आदर न कर पाए तो उसे अपने पति को प्रेम करना भी असंभव हो जाएगा। तरस के अलावा यदि वह उसे अपने से अधिक परिपक्व समझकर उसका आदर न करे तो पत्नी पति से सिर समझकर व्यवहार नहीं करेगी। इसलिए किसी व्यक्ति के विषय में विचार करते समय आपको स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या आप उसका इतना आदर और प्रशंसा करते हैं कि आप जीवन भर उसे उसी प्रकार देख सकेंगे। इस प्रकार का सम्मान विवाहित जीवन की कई भावी समस्याओं को सुलझा सकता है। मैं समझती हूँ कि किसी व्यक्ति के स्वभाव के विषय में 100% जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है, परंतु अध्याय 5 में और पहले जो कहा गया है उससे आपको कुछ तो मार्गदर्शन मिलना चाहिए, कम से कम उस व्यक्ति को पाने में जिसे परमेश्वर ने आपके लिए चुना है। किसी भी स्थिति में कभी भी ऐसे व्यक्ति से विवाह मत कीजिए जिसके विषय में आपको बहुत कम या बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जैसा कि हमारे देश में कई लड़कियां अक्सर करती है। विवाह जीवन भर का संबंध होता है और इसे बदला नहीं जा सकता और इसे हल्के रीति से नहीं लिया जा सकता। आप सोचते होंगे कि यदि आपके माता पिता आपके लिए किसी अविश्वासी या अनुचित व्यक्ति का चुनाव करे तब आपको क्या करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ऐसी परिस्थिति में लड़के की तुलना में लड़की के लिए माता पिता को नहीं कहना अधिक कठिन होगा। फिर भी ये आवश्यक है कि आप दृढ़ता के साथ किंतु प्रेम से अपने विश्वास के लिए स्थिर रहे। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। शैतान आपको भविष्य के विषय में असुरक्षित विचारों की परीक्षा में डाल सकता है और इस प्रकार आपको एक अधार्मिक जीवन साथी का चुनाव करने के लिए उकसा सकता है, परंतु उसकी ओर ध्यान मत दीजिए। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा कभी किसी की हानि नहीं हुई है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप परमेश्वर का आदर करेंगे और उस पर निर्भर रहेंगे तो वह आपको अपमानित होने नहीं देगा। वह अपने नियुक्त समय में आपको अपना सर्वोत्तम देगा और आप उस सर्वोत्तम को खोना नहीं चाहेंगे, नहीं ना? दहेज की मांग पर पहले ही विचार किया जा चुका है, या मुझे इसमें कुछ शब्द जोड़ने दीजिए कि दहेज की मांग करने वाले से विवाह करने से पहले एक मसीही लड़की को दोबारा सोचना चाहिए। संभव है कि वह आपसे कम और धन में अधिक रुचि रखता हो। उसी समय किसी के धन या पद के कारण उस पर मोहित मत होइए। जैसा कि बाइबल हमें स्मरण दिलाती है, धन प्रेम का स्थान कभी नहीं ले सकता। श्रेष्ठ गीत 8:7। अविवाहित लड़की। अविवाहित लड़कियों से कुछ बात कहे बिना ये अध्याय अधूरा रह जाएगा। भारतीय समाज में ऐसा बहुत कम ही होता है जब लड़की दृढ़ता के साथ अविवाहित रहने का चुनाव करती है। ऐसे जीवन का चुनाव तभी किया जाना चाहिए जब परमेश्वर की स्पष्ट अगुवाई प्राप्त हो, क्योंकि ऐसी किसी बुलाहट के सहारे ही आप परीक्षा के समय स्थिर रह सकेंगी। कुछ लोगों के लिए इस प्रकार गृहस्थी के भार से मुक्त रहने की बुलाहट कुछ वर्षों के लिए हो सकती है, जब परमेश्वर उसे किसी विशेष कार्य के लिए बुलाता है और बाद में वह विवाह के लिए उसे मार्गदर्शन दे सकता है। कुछ ऐसे लोग भी इसे पढ़ रहे होंगे जिन पर उनकी इच्छा के विरुद्ध अविवाहित जीवन लाद दिया गया है। आपके परिवार के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति या उस परिस्थिति के प्रति जिसके कारण आप विवाह नहीं कर पाए, उनके विषय में नाराजगी महसूस न करना आपके लिए कितना कठिन होगा, जब प्रेम करने के लिए और प्रेम पाने के लिए एक स्त्री में स्वाभाविक रूप से होने वाली सभी अभिलाषाएं जागृत रहे, तो स्वयं आपके लिए दुखी रहना कितना कठिन होता होगा। चाहे आपके साथ किसी प्रकार का अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ हो, तब भी क्रोध और आत्मतरस करना हमेशा गलत होता है और व्यक्तित्व पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। उन्हें कबूल करना और त्याग देना चाहिए। एक बार जब आप इन घृणात्मक बातों से दूर हो जाएंगी और परमेश्वर के साथ आपकी संगति फिर से स्थापित हो जाती है, तब आप अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए उस पर निर्भर हो सकती है। वह आपकी परिस्थितियों को आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित करने में समर्थ है, किंतु यदि वह ऐसा नहीं करे तो आप सुनिश्चित हो सकती है कि आपके लिए उसने जो बुलाहट रखी है उसमें उसने आपके लिए कुछ श्रेष्ठ रखा है। उसके अनुग्रह की बहुतायत आपका कभी न चुकने वाला भाग होगा और आप पाएंगे कि वह आपकी कमी को बहुतायत से पूरा करेगा। 2 कुरिन्थियों 12:7-10। आपको अपने विवाहित बहन से जलन रखते हुए जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। निसंदेह उसे कई ऐसे सौभाग्य प्राप्त है जो आपको नहीं मिले हैं, परंतु ये मत भूलिए कि आपको भी कई सौभाग्य प्राप्त है जो उसे नहीं मिले हैं। 1 कुरिन्थियों 7:34 सूचित करता है कि आप उसकी अपेक्षा बिना कोई कठिनाई से अत्यधिक रूप से परमेश्वर की सेवा कर सकती है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप फलवंत रूप से कार्य कर सकती है, उदाहरण के तौर पर बच्चों और युवाओं के बीच सेवा। अपने खुद के अनुभव के कारण आप उन लोगों को जो जीवन की लड़ाई में कठिनाई पूर्ण अनुभव से होकर गुजरी है, उनको सहानुभूति पूर्ण मित्रता का बहुमूल्य उपहार भी दे सकती है। हर एक के लिए किसी न किसी प्रकार से परीक्षाएं आती रहेंगी। स्त्री की संवेदनशीलता और भावनात्मक प्रकृति के कारण वह शैतान के आक्रमण का सीधा लक्ष्य बनती है, परंतु परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। 1 कुरिन्थियों 10:13। परमेश्वर के प्रेम सर्वोच्चता और विश्वास योग्यता में दृढ़ विश्वास रखना ऐसी ढाल है जो शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकती है। इफिसियों 6:16। बहुत सी अविवाहित स्त्रियां जीवन के मध्यांतर में कड़वाहट और उदासी से भर जाती है, परंतु उन्हें ऐसा स्वभाव नहीं रखना चाहिए। प्रभु के प्रति श्रद्धा को बढ़ाने के द्वारा और उसके बताए हुए सभी मार्गों को आनंद के साथ स्वीकार करने के द्वारा और हर उस कृपा के लिए जो आपने पाई है, परमेश्वर और मनुष्य के प्रति धन्यवाद का स्वभाव रखने के द्वारा ही आपका जीवन प्रभु के निरंतर प्रेम से परिपूर्ण हो सकता है और बहुतों को आशीष देने के लिए झलक सकता है। अविवाहित जीवन व्यतीत करने वाली स्त्रियों के कई उदाहरण हैं जिन्होंने कलीसिया में उल्लेखनीय सेवा प्रदान की। पंडिता रमाबाई, जिसने केड़गांव मध्य भारत महाराष्ट्र में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो एक विधवा थी, एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। डोनावुर की एमी कारमाइकल एक और उदाहरण है, जो भारत आने वाली भक्त मिशनरियों में से एक थी। उनके जीवन से आशीषों का जो प्रवाह प्रारंभ हुआ था, वो उनके निधन के कई वर्षों पश्चात आज भी लोगों के लिए आशीष का कारण बना है। और ये कई उदाहरणों में से केवल दो ही है। अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को जानना और आनंद पूर्वक उसे पूरा करना, चाहे वो कुछ भी हो, यही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसमें ही शांति है, हमारी निर्बलताओं में उसका सामर्थ्य। अंत में ये ज्ञान कि हम निर्बल यौन हैं, हमें परमेश्वर की ओर निकट ले जाए, जिसने ये कहा है, मेरा अनुग्रह निर्बल लोगों में अधिक प्रदर्शित होता है। 2 कुरिन्थियों 12:9। ये मत भूलिए कि एक विशेष कार्य करने के लिए ही परमेश्वर ने स्त्री की सृष्टि की थी। आपके जीवन में ये कार्य पूरी तरह से परिपूर्ण हो।